आप हैं SBS हिंदी के साथ।
दोस्तों, भारत का जो केंद्रीय बजट आया है उसमें आपने सुना होगा कि NRIs के लिए कई बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि NRIs की परिभाषा बदल जाएगी और उनको कुछ खास आय पर टैक्स भी देना होगा। लेकिन इसको लेकर बहुत भ्रम है, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो मेरे साथ गुजरात के भारत के जाने माने CA मनोज जैन हैं ये समझाने के लिए कि क्या बदलाव हुए हैं और उसका NRIs पर क्या असर हो सकता है। मनोज जैन, आपका स्वागत है SBS हिंदी में।
थैंक यू। रिसेंटली आई होप इट्स फाइन इन इंग्लिश, रिसेंटली सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन हु कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस। So currently what happens if an NRI comes to visit in India, he can stay in India overall for a period of 182 days in a financial year without triggering of becoming a resident. Now this period has been shortened to 120 days. This means that the flexibility of visiting to India has clearly been reduced from 182 days in a year to 120 days in a year to remain a non-resident in India. So this is one of the major changes. And so second, one important rule is they have introduced in section amendment to section 6 is that now a person who is resident in India, who is a citizen in India, but who is not a resident in any of the other country or territory, either on account of a residency or domicile or any other method prescribed criteria in that country, then he would be deemed to be a resident of India for the tax purposes. So this is one of the major changes which have been introduced in the latest budget.
So because of these changes, एक confusion ये हो गया है कि अगर मैं भारत से बाहर कहीं रह रहा हूँ, will I have to pay taxes on income in India or outside too?
Fine. Let me get to one more point in that. First, then I'll explain your exact query. Earlier what was happening that a person is either classified as a resident or a non-resident. And then in the second category of a non-resident, there's a distinguish as a resident, but not ordinary resident, and resident and ordinary resident. I understand this is a bit technical point, it's thoda samajhna mushkil padega, but to make it simple, agar pehle Bharat mein koi pichle 10 saal mein se 9 saal भी अगर वो नॉन रेसिडेंट होता था तो वो परमानेंट नॉन रेसिडेंट ही होता था। जिसका वो रेसिडेंट हो जाता उसका भी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाता था। नाउ दिस पीरियड ऑफ 9 इयर्स हैज बीन शॉर्टन टू 7 इयर्स। सो इफ एनी पर्सन इज सेज नॉन रेसिडेंट इन 7 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इयर्स देन ही शैल बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो इन अदर वर्ड्स, इफ समवन हैज कम नॉट इवन कम टू इंडिया फॉर सिंगल डे इन लास्ट 2 इयर्स बट हैज बीन अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीसीडिंग 8 इयर्स देन ही विल बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंट and ordinary resident and his global income will be taxable in India. So to make it more simpler, I'll say, agar koi vyakti India aata hai, 120 din se zyada wo India mein rehta hai, to us particular financial year mein wo resident hai. Lekin wo resident ordinary resident hai ya not ordinary resident hai, iske liye hum uske last 10 years ka record dekhenge. In the last 10 years, if he has been resident in India for the 8 years, then he will be resident in India for the current year also. And once he becomes resident in India, his global income will be taxable in India.
His global income, because
global income. So, कोई NRI अगर India आ रहा है और वो resident और ordinary resident में qualify होता है, then global income. But if NRI is not visiting India, or if he's not becoming a, he's becoming resident but not ordinary resident, then only income from his Indian businesses or business from India will only be taxable in India and not the global income.
But ये clause है कि only if he is not paying income tax in any other country.
Only income tax in any other country. But now one major press release was issued yesterday after release of a budget by the Indian government, and they made it clear that agar koi vyakti sirf kaam ke liye India se bahar ja raha hai, only for the purpose of a work as a migrant, and he's earning income out of India, since in India mein aisa hota hai ki mostly middle east mein jaate hain log जो गल्फ एरिया में मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ इनकम अर्न हो रही है, और फिर वो तो उनके लिए, क्योंकि गल्फ एरिया में वहाँ पे टैक्सेस नहीं है यूएई वगैरह कंट्रीज में, तो उनके लिए इंडिया में भी टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ इंडियन बिजनेस में टैक्स देना होगा। ये क्लेरिफिकेशन बजट के बाद आया है बाई वे ऑफ प्रेस रिलीज, एंड दे हैव अश्योर्ड टू मेक द प्रॉपर अमेंडमेंट इन द प्रपोज्ड बजट ऑल्सो। सिंस दिस इज बजट एंड नॉट द फाइनेंस एक्ट विच इज येट टू बी पास इन द पार्लियामेंट, सो अभी ये प्रपोजल्स है, सो ये प्रपोजल में एक चेंज ये आएगा कि जो इंडिया नहीं आ रहा है और उस कंट्री में भी है जहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है, तो भी उसकी वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया से अराइज हो रही है, नॉट द इनकम व्हिच ही इज अर्निंग आउट ऑफ इंडिया। तो वो कंफ्यूजन दूर कर दिया इन्होंने कल के प्रेस रिलीज में।
तो जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इस तरफ रहने वाले लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं जो परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ इनकम अर्न कर रहे हैं, यहीं टैक्स दे रहे हैं, और जिसकी थोड़ी बहुत कुछ इनकम है भारत में, जैसे किराया आ रहा है या कोई दुकान है उसका वो चल रही है, उनके ऊपर क्या असर होगा?
जो इंडिया से इनकम हो रही है, जैसे किराना किराया आ रहा है या जो भी रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट इनकम जो इंडिया में अर्न हो रही है, उस पर तो इंडिया में वैसे भी टैक्स लगेगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, पर जो इनकम वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा उनको।
जनसब
वो तभी लगेगा जब वो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा आके रहते हैं, तभी लगेगा।
आप सर लगातार एनआरआई के लिए काम करते हैं, उनका उनके संपर्क में रहते हैं, आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव स्टेप है? How will NRIs react to this step?
Yeah, basically तो हमें ये intention देना चाहिए कि ऐसा law क्यों ले आए, जो main दो changes है, first कि 182 days को 120 days कर दिया गया, और दूसरा कि अगर कोई Indian citizen है और वो ऐसे country में रहा है जहाँ कोई taxes नहीं है तो उसकी income इंडिया में taxable होगी, इसका intention क्या है? So the basic intention is just it is anti-abusive law. कुछ लोग क्या करते हैं कि taxation rules का benefit लेने के लिए अलग countries में establish हो जाते हैं जहाँ पे taxes नहीं है और वो कामकाज इंडिया से करते हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए ही ये प्रोविजन आया हुआ है। सो टू दैट एक्सटेंट दिस इज फाइन, बट इससे नॉर्मल जो एनआरआईज है जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और इंडिया के बाहर इनकम अर्न हो रही है, उनको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उनके लिए कोई भी मतलब चिंता का विषय नहीं है ये।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए जैन साहब।
थैंक यू।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।